نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة فرقان سورة نور کے بعد سورة فرقان کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نور ہمارے دلوں میں آنے لگتا ہے تو پھر ہمارے اندر فرقان پیدا ہوتا ہے اور فرقان کیا ہے حق اور باطل کا فرق حقیقت یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم سب رہتے ہیں یہاں اچھی اور بری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی دنیا بنا دے گا ہمارے لیے کہ جس میں صرف اچھی اچھی چیزیں ہوں اچھے کام کرنے والے ہوں اور دوسری چیزیں نہ ہوں لیکن کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کا کلام پڑھنے سے اس لیے فرقان قرآن کا نام بھی ہے اور قرآن حقیقت میں انسان کے اندر ایک ایسا فرقان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر اللہ کی مرضی بھی سمجھ آنے لگتی ہے اور اس کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس زندگی کو میں گزار رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا چونکہ سورۃ فرقان ہے تو اس میں دو دو چیزوں کا تقابل آپ کو دکھے گا حق اور باطل گرمی سردی دھوپ چھاؤں وغیرہ اسی طرح اس سورت میں الرحمن قرآن اور تبارک یہ تین لفظ کثرت سے استعمال ہوں گے آپ کے لیے اس سورت کو سننے کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ جہاں بھی لفظ تبارک کسی بھی فارم میں آئے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان بالقدر کے بہت خوبصورت نسخے بھی بتائے ہیں سورہ فرقان ہی کی آیت نمبر 2 پہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمارے لیے اس قرآن کو پڑھنا آسان کر دے اور میرے اندر ایک ایسا کرائیٹیرین ایک ایسا بیلنس مقرر کر دے کہ جو مجھے تیری مرضی اور تیری ناراضگی دونوں کا فرق بتا دے اور پھر اس کے بعد میرا فیصلہ تیری مرضی کو ماننے کا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا کیوں کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو سبحان اللہ کتنی پیاری آیت سے خوبصورت کا آغاز ہے پہلی بات کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں بھی اللہ کا نام ڈل جاتا ہے نا وہ بربرکت ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت کس چیز کو کہا ہے کہ دوسروں کو خوشیاں دینے کی خواہش فائدہ مند بننے کی خواہش اور جس مقصد کے لیے انسان کوئی کام کرے وہ حاصل ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں برکت ہو گئی اور جب تک مالک کائنات کی رضا نہ ہو زیادہ مال بھی برکت والا نہیں ہوتا اللہ کی رضا تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے ساتھ تو غم بھی بابرکت بن جاتے ہیں کیسے کہ صبر کا موقع مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قرآن کو اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی بات کی آج میرا اور آپ کا یہ خود سے سوال ہونا چاہیے کہ یہ قرآن تو للعالمین تھا کیا میں اور آپ اس کو پہنچائیں گے پہنچا چکے سارے جہان والوں کے پاس قرآن کب پہنچے گا جب حاملین قرآن اس کو لے کر اٹھیں گے محنت کریں گے اسی صورت میں ہم انشاءاللہ آیت پڑھنے والے ہیں کہ جس میں قرآن کے پانی کو ساری دنیا میں ڈالنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے کس ذات نے نازل کیا فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی یہ جو فقط درہ تقدیر ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر لیں اصل میں اس صورت میں امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے موضوع کی مناسبت سے یہ صورت بہت اہم ہے جب تک مسلمان کو یہ شعور نہیں ہوگا اس بات کا فرقان نہیں ہوگا کہ میرے جینے کا کون سا انداز دنیا میں بھی مجھے ترقی دے گا اور آخرت میں بھی تب تک یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کی حالت نہیں بدلے گی تو پتہ کیا چلا کہ تقدیر پر راضی رہنا ایک انسان کے لیے اس وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ راضی ہو جائے بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ راضی نہیں ہوتے لیکن اس کی تقدیر کے بارے میں گلے شکوے کرتے ہیں اور جتنا ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی ہوگا اتنا فائدہ ہوگا آپ دیکھیے کہ جو دنیا کی ہماری تقدیر ہے نا یہ پریڈکٹیڈ ہے اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہاں پیدا ہوں گے کیا ہوں گے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آخرت کی ہم نے خود بنانی ہے اور تقدیر کیا ہے پری نالج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہمیں پہلے سے لکھ کے رکھ لیا ہمارے بارے میں کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم کیا کریں گے اور کس طرح سے ہوں گے اور اس پوری صورت میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے بلکہ آگے جا کر بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी तकदीरों को बेहतरीन तरीके से ऐसी बनाने की तौफीक दे कि पूरी दुनिया के लिए हम खुशी और सुकून का जरिया बन जाएं। फिर फरमाए वत्तखज़ू मिन दूनी आलिहत, फिर उन्होंने अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते ना जिंदा कर सकते ना मरे हुओं को फिर उठा सकते। 3 सेकंड तक गौर कीजिए, लोग किन को पूछते हैं जो बेचारे खुद अपनी कब्र में से करवट नहीं बदल सकते। है इससे बड़ी कोई ना समझी कि वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे भी कह लीजिए लेकिन उनके अपने हाथ में कुछ नहीं, अगर कुछ होता तो क्या वो अपनी तकदीरों के फैसले बदलवा ना लेते, अपनी मौत के फरिश्ते को दूर ना करते। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया वो कहते हैं ये फुरकान एक मन घड़त चीज है। हाईलाइट करें, कुरान को फुरकान कहा गया, कहा ये तो एक मन घड़त चीज है जिसे जिस उसने आप ही घड़ लिया और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की, बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए। वकालु असातीरुल अव्वलीन, कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है और वो इसे सुबह शाम सुनाई जाती है। देखिए इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं नबी पर। ए नबी इनसे कहो किसे नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमान का भेद जानता है, हकीकत ये कि वो बड़ा गफूर रहीम है। तो यहां तक अल्लाह का जिक्र था, फिर कुरान का, अब आगे रसूल का जिक्र है। और इस पूरी सूरत में आपको ये चीजें साथ साथ दिखती जाएंगी। वकालु माली हाजर रसूल याकुलुद्दाम, कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और न मानने वालों को धमकाता। वही सोच कि दीनदारों को दुनिया के कामों से दूर कर दो ताकि ये हमारे रंग में भंग न डाले। फरमाया अच्छा और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता और इसके पास कोई बाग ही होता जिससे इत्मीनान की रोजी हासिल कर लेता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग एक सहरजदा आदमी के पीछे लग गए हो, देखो कैसी कैसी हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं, ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको सूझती ही नहीं। तो इनको बता दो तबारक अल्लज़ी शाजालक खैरुम मिन ज़ालिक, बड़ा बबरकत है वो जो अगर चाहे तो इनकी तजवीज करदा चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है, एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल्लात। याद रखिए मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोगों की यही मेंटेलिटी होती है कि जब लोग उनको दीन की तरफ बुलाएं, दुनिया से ऊपर उठाकर एक दूसरी दुनिया की बातें सुनाई जाएं, तो वो फिर इसी तरह के क्राइटेरियन रखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम नबी के को ताने देते हो कि तेरे बाग नहीं है, तेरे महल नहीं। अल्लाह ने तो नबी के लिए परमानेंट किस्म के बाग रखे हुए हैं। क्या फिरौन के महल्लात उसको अल्लाह की पकड़ से बचा चुके? क्या फिरौन को अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ दिया था वो सारी चीजों को पाकर अल्लाह की तरफ आ गया? तो कितना गलत मियार है रसूल को परखने का। आज भी किसी दीनदार को परखने का यही मियार है अगर, तो बहुत ही गलत मियार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को छुटला चुके हैं और जो इस घड़ी को छुटलाएगा इसके लिए हमने एक भड़कती हुई आग रखी है। जरा आयत के साथ साथ चलिएगा, इज़ारात मिन मकानिन बईद, जब वो दूर से इनको देखेगी। कौन देख रही है आपको पता? जहन्नम आग, यानी वो जहन्नम जब इनको दूर से देखेगी। समीउ लहा तगय्युदम व ज़फीरा, तो इसके गजब और जोश की आवाजें सुन लेंगे, जैसे वो हंडिया खोलती है या कहीं बहुत बड़ी कड़ाही हो, या कभी आप दूर से पानी गिरता देखें तो आवाजें आनी शुरू हो जाती है ना, पहाड़ों पे पानी गिरता है। यानी जहन्नम से भी बहुत दूर होंगे लोग तो जहन्नम की उबलने की खोलने की जोश मरने की आवाजें आएंगी। फिर क्या होगा? वह इजा उल्कू मिनहा मकानन दय्यिका, और जब वो दस्तों पा बंधे हुए इसमें एक तंग जगह में ठोंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। मुकर्रनीन, जंजीरियों में बंद कर देगा, हाथ पो बांधेगा, बिल्कुल ऐसे कि जैसे चिकन को धागे बांध बूंद के ओवन में डाल दिया जाए कि अब इसको जलने दो गलने दो। अल्लाह अकबर कबीरा, आप सोचिए कि कभी भी छू कर देखिए जरा कितनी गर्म होती है आग। और ये दुनिया की आग जहन्नम की आग से 69 टाइम्स कोल्डर है, ठंडी है। जहन्नम की आग 70 गुना शदीद है। अब अगले पारों में आप देखेंगे दिन ब दिन जहन्नम का और जन्नत का तस्करा खुल के आएगा कि अब सब सुनना था सुन लिया, अब दिल को पिघलाओ जहन्नम की गर्मी का सोचकर। ठंडे पानियों में धोकर अल्लाह ने इसे आपको भेजा, तभी हम इससे फायदा लेते हैं। और वो क्या चीज है जिससे आज हम बेखौफ बैठे? आप किसी भी जगह पे देखिए कि जब लावा पड़ता है, कुछ ऐसी पिक्चर्स थी वीडियोस की सूरत में कि जिसमें लावा पड़ता हुआ दिखता है और उस वक्त देखकर खौफ आता है। बल्कि एक जगह दुनिया में आज भी ऐसी, पूरी चारों तरफ बर्फ है और बीच में एक होल हो गया और उस होल में से आग निकल रही है, और उसको देखने के लिए जो लोग जा रहे हैं, कैमरे बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं बड़े गौर से, तो मैं सोचती हूँ यहाँ बैठ के भी इनको नहीं याद आ रहा अल्लाह, इतनी आग है, बाहर बर्फ है। कैन यू बिलीव इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर? हो सकता है वो जहन्नुम का ही कोई जोश हो। तो अल्लाह तआला कहते हैं जब दुनिया में ये लोग नहीं चले ना, तो अल्लाह ने दुनिया में खुले फिरते थे, अल्लाह ने वहां बांध दिया, चलो मजे करो अब अपनी मर्जी करो। और फिर इस वक्त वहां जाकर वो चीखेंगे, जोश मारे जाएंगे, और वहां क्या कहेंगे, काश हमें मौत आ जाए। क्या कहा जाएगा, ला तदुल यौम सुबूरम वाहिदा, इस वक्त इनसे कहा जाएगा आज एक मौत नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो, वदु सुबूरन कसीरा, मतलब क्या है, एक पुकारो या बहुत सारी पुकारो, मौत आनी कोई नहीं। दुनिया में भी सोचिए कि मौत कितनी बड़ी नेमत बन जाती है उस वक्त जब हम किसी बहुत बड़ी बीमारी से निजात पा लेते हैं। कोई शख्स बहुत बीमार, आप देखिए कि अल्लाह ना करे किसी के जिस्म को आग लग जाए, तो मौत उसके लिए रहमत है, क्योंकि जिस्म पे आग लगी हो तो इंसान रोज चले रोज मरे, क्या वो इंसान की जिंदगी है? लेकिन ऐसे वक्तों में अगर अल्लाह सुबहान तआला उस इंसान को इस दुनिया से सुरखरू करके ले जाता है, तो ये तो एक बात समझ में आने की है, जब जहन्नम की आग सताएगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? अल्लाह ताला में से हर एक को इससे बचाए, और अल्लाह ताला सारी दुनिया के लोगों को आग से बचा ले और हमें उसका जरिया बना ले। फिर फरमाया अब इनसे पूछो, कुल अज़ालिका खैरुन, इनसे पूछो बताओ क्या ये अंजाम बेहतर है, या अम जन्नतुल खुल्द अल्लती वुइदल मुत्तकून, या वो अबदी जन्नत जिसका वादा अल्लाह से डरने वाले परहेजगारों से किया गया, जो इनके अमल की जजा है और इनके सफर की आखिरी मंजिल होगी, जिसमें इनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी और जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसका अता करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक वाजिबुल अदा वादा है। आप खुद सोचिए अपने लिए, क्या हम हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी करना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी मौज की मस्ती की और आखिरत फिर जैसी भी रब जाए? तो दो में से एक चीज को चूज करना है इस सूरत फुरकान को पढ़ते हुए, यही हक और बातिल का फर्क होता है। एक तरफ मस्ती वाली जिंदगी, ईट ड्रिंक बी मैरी, मजे करो मौज करो, यू लिव वंस यू यंग वंस, अभी देखा जाएगा अभी देख लेंगे जब जो होगा, और एक तरफ वो जन्नत जिसका अल्लाह ने मुत्तकियों से वादा किया, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए। अब जन्नत की एक झलकी, व यौम यक्षुरुहुम व मा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और इनके माबूदों को भी बुलाएगा जिन्हें आज अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो इनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद रास्ते भटक गए? वो अरज करेंगे, पाक है आपकी जात, हमारी तो ये मजाल तक न थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बनाए, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी दिया, हत्ता कि ये सबक भूल गए और शामत जदा होकर रहे। यूं झुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी बातों को जो आज तुम कह रहे हो, फिर तुम न अपनी शामत को टाल सकोगे और न कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे इसे हम सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। आप देखिए कि अल्लाह ने दुनिया भी दी, लेकिन दुनिया की कसरत इंसान को बहुत दफा गाफिल कर देती है। कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह मेरे बच्चों को रूखी सूखी देना, सब ये कहते हैं कि अल्लाह देना, लेकिन ज्यादा दुनिया अल्लाह और बंदे के बीच में रुकावट कब बनती है? जब बंदा मकसद को भूल जाता है, आसाइशों से ऊपर उठ के आराइश और आराइश से ऊपर उठकर नुमाइश में पहुंच जाता है। इसीलिए अल्लाह सुबहान तला मुझे और आपको सबको यही बात कहकर कहते हैं कि फिक्र करो, दौलत दी है अल्लाह ने, अल्लाह का करोड़ शुक्र करो, उसको अपनी आखरत के चप्पू बनाओ ताकि तुम्हारी दुनिया की कश्ती तैरती हुई आखरत के समंदर में आफियत से गुजर जाए। और अगर दौलत के बाद ये हालात हों जो यहां बताए गए, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों पे जब पकड़ आती है तो वो उसको कुछ नहीं कर सकते। आयत देखिएगा कितनी खूबसूरत दुआएं हैं, वमा अरसलना कबलक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम, ऐ नबी, आपसे पहले भी जो रसूल हमने भेजे थे वो सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग थे। देवर ह्यूमन, उनके पास इंसानी जरूरियात सारी थी। लेकिन फिर लोग इन बातों को फितना क्यों बनाते हैं? इसकी वजह खुश रहने का राज है। ये जो आयत का टुकड़ा बताने लगी हूँ, इंसानी रिश्तों को निभाने का नुस्खा है इसके अंदर। और मैंने कई लोगों को ये आयत दी है, लोग वजीफों के लिए देते हैं, मैं कहती हूँ इसको गौर से पढ़ लें, आपको इसमें अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मसलन सवाल क्या है? सास खुश नहीं होती जो मर्जी कर ले, बहू खुश नहीं होती जितनी मर्जी इनके लाड देख ले, फुला नंद है, फुला उनको तो बस मुझसे है ही चिड़, और फुला दोस्त है वो मुझसे हसद करती है। अब कुछ रिश्ते ऐसे जिंदगी में होते हैं जिनको ना तोड़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, अब करें क्या? तो अल्लाह तआला कहते हैं, वजअलना बादकुम लिबादिन फितना। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया। अतस्वीरून, क्या तुम सब्र करते हो? और सब्र कब आता है? जब अगली बात का यकीन आ जाए। वकाना रब्बुका बसीरा, तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। ये है खुश रहने का नुस्खा, कुछ चीजों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। दैट्स इट, यही जवाब है। किसी जगह आप काम करते हैं, आपके साथी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, कहीं कुछ कहीं कुछ, बस इस शायद को हिफ्ज कर लें। कई जगह खिलाफे तबा लोगों के साथ जीना पड़ता है, बस क्या करो, इस आयत को सोच लो कि अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश रखी, तुम्हारे गुनाहों का दर्जा बढ़ा दिया। बाज़ वक्त मुसलमानों को काफरों की बातें सुननी ही पड़ती है, बाज़ दफा बच्चियों को ससुराल की बातें सुननी पड़ती हैं, बाज़ कुछ कहीं दीन वालों को दुनिया वालों की, दुनिया वालों को दीन वालों की, और कुछ तबीयतों में तो खामखा ये किस्म की वो इरिटेशन होती है, किसी दूसरे को देखकर एकदम उनको गुस्सा आने लगता है। बस अतस्वीरों, सब्र करते हो, कर लिए तो बस अल्लाह ने तुम्हारे लिए हाल को देखा है। इतना सुकून मिलता है। एक दफा एक सास की बात कर रही थी, और जेन्युइन बात थी, बहू भी अच्छी थी सास भी अच्छी थी, लेकिन मिजाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो वो बहुत ही, मैं क्या करूं, अल्लाह से भी डर लगता है, मियाँ को भी नहीं कह सकती, मांग से भी अपना बेटा छूटे, तो मैंने उनके सामने पे याद रखी थी। तो उस वक्त फिर हमको यकीन आ गया कि वाकई ये मेरी आजमाइश है, तो मैंने सब्र करना है। कहते हैं ना कि जब किसी बर्तन को तोड़ नहीं सकते तो उसको ठंगोरना क्यों है। तो जिंदगी में यही खुश रहने का राज है। इंसानों की जिस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, या हमारी मर्जी की हर चीज नहीं होगी। बात वह शोहर बीवी का मिजाज नहीं मिलता, क्या करेंगे आप, उनका मिजाज और आपका, और आप भी नेक वो भी नेक, आप भी बीच के नेक वो भी बीच के नेक, आप भी बहुत नेक वो भी बहुत नेक, कई तरह के होते हैं। लेकिन अब इस उम्र में छोड़ना नहीं तोड़ना नहीं, तो फिर चुप करके सब्र कर लीजिए, बस अवॉइड कीजिए। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि जैसे आपको पता है कि आपके रास्ते में एक पत्थर आ रहा है, बस अपनी गाड़ी को जरा से इधर मोड़ लें, आप पत्थर से जाके गाड़ी हिट तो नहीं करते, आपकी अपनी गाड़ी का बम्पर टूट जाएगा। इस तरह जब किसी इंसान से भी आपको ये फीलिंग्स आए कि मेरी उसकी बनती नहीं है, मिसाल है जो हम जुमला बोल देते हैं, मुझे वो एक आंख नहीं भाता, तो जस्ट अवॉइड हिम और हर, दैट्स इट। यही जिंदगी का खूबसूरत असूल है कि डोंट बी रिएक्शनरी, टूटने की बजाय उलझने की बजाय कोशिश करो कि कोई कंट्रावर्सी शुरू ही ना हो। जहां फील होने लगे बात बदलने लगी, फौरन एक स्माइल के साथ चाय का पूछ के वहां से उठ जाए, जो मर्जी कोई कह ले, लेकिन आप गलत बात। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक से पारा नंबर 19 की आयात उम्मा करेंगे, और इन आयात में हमारे लिए यही सबक है कि हर दिन जब हम इसके बारे में सुने तो हमें ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता जाए कि हम एक उम्मत हैं और हमने इस दुनिया में एक उम्मत बनकर जीना है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस कुरान के सफर के साथ साथ एक उम्मत बना दे। आयत नंबर 74 सूरह फुरकान, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। और वो लोग हैं जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। कहने को 19 बारे में सिर्फ एक आयत है उम्मत के मौजू की, लेकिन असल में आज उम्मत मुस्लिमा को इस दुआ के मांगने की जितनी ज़रूरत है शायद ही किसी और की हो। और हकीकत है कि जब तक शौहर और बीवी और बच्चे हमारे दीन के साथी नहीं बनते, हम तब तक एक उम्मत बनकर दुनिया को सर्व कर भी नहीं सकते। जब यहाँ पहुंचेंगे इस आयत में, तो हम देखेंगे कि आंखों की ठंडक क्या होती है। अपने लफ्जों में हम कहते हैं कि अल्लाह, हमारे शौहर और हमारे बच्चे ऐसी खूबसूरत नेकियां करें कि जिनको देखकर खुशी से हमारे आंसू निकल आए। यही है आंखों की ठंडक। जब चीज गीली होती है तो ठंडी हो जाती है ना। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को, एक एक को दीन के काम के लिए चुन ले, और इस तरह से वो नेकियां करने वाले बन जाएं कि तू भी उनसे राजी हो और दुनिया वाले भी उनसे राजी हो जाएं। एक ही आयत ही, चलते हैं आज के टारगेट पे। सूरत फुरकान के शुरू से शुरू करेंगे, बात को बढ़ाई ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला। इसके बाद अब देखिए कि 19वां पारा शुरू होता है। बिल्कुल मुझे सूरह फुरकान के शुरू से अभी तक यही फीलिंग आ रही है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्यामत के मैदान की झलकियां दिखा रहे हैं। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه, जो लोग हमारे हजूर पेश होने का खदशा नहीं रखते, यानी जिनको इस चीज का कोई फिक्र ही नहीं, जिनको इस चीज का कोई अंदेशा ही नहीं कि अल्लाह के सामने आना है, वो कौन से हैं? जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस रोज वे फरिश्तों को देखेंगे, वो मुजरिमों के लिए किसी बिशारत का दिन ना होगा। चीख उठेंगे कि पनाह बा खुदा, और जो कुछ भी इनका किया था इसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह पर ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मुकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल इस रोज नमूदार होगा, और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी, और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। अब देखिए, ये बड़ी जुर्रत की बात है। कहते थे हम नहीं मानेंगे उस कुरान को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हो रहा है, हम कौन सा मानेंगे जो खुद अल्लाह हमारे तक फरिश्ते के जरिए भेजे। क्या आज तक किसी ने कहा कि मैं अमेरिका के लॉज तब मानूंगी या गा जब सदर ओबामा खुद लाकर मुझे बताए। सोचिए, आप कोई सोचते, कोई कहता है कि जब तक कोई वीजा इशू करने वाला जो पीछे से अफसर था वो खुद आकर मुझे वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताएगा तो मैं नहीं मानूंगी। वो कहते हैं एक कान नंगा कर लें, अब कर लेते हैं, वो बायां कान सीधा करवा दें, टेढ़ा कर दे, सब करते हैं। तो ये तो बड़ी जरूरत की बात है ना कि लोग ऐसी बातें कर दें। असल बात यह है कि आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। देखिए, क्यामत का जो अंदेशा है ना, ये इंसान की तरजीहात बदल देता है। अल्लाह ताला ने कहा कि फजाल ना हो हबा मंसूरा, जो अमल इंसान ने अल्लाह की मर्जी के बगैर किए होंगे क्यामत के दिन वो राख बना दिए जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, दो इमारतें गिली थी आज से चंद साल पहले, कैसी धूल उठी, कैसा शोर, आज तक उसका गुबार है, कितना गर्रा था, कितनी जोश थी, लेकिन सब धूल बन गया। जिस दिन सारी दुनिया की इमारतें गिरेंगी उस दिन क्या होगा? उस दिन किस पे इल्जाम दोगे? उस दिन किस को कहोगे? अल्लाह तो ये सब कुछ खत्म करने वाला है। लिहाजा अपने आप को इस चीज के साथ रखने की जरूरत है कि मेरे मालिक, तूने ये किताब जो मेरी जिंदगी में खुलवा दी है, अब इसको मेरी पूरी जिंदगी में भी खुली रखना। मेरा नाम अमाल इसी किताब की सूरत में बन जाए। अगली आयतों में एक बहुत ही ज्यादा थॉट प्रवोकिंग किरदार पेश किया जा रहा है। इमेजिन कीजिए, एक शख्स है अच्छा भला अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ा, किताब खुल गई, इतने में कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई अपना, कोई बेगाना सामने आया और उसने उससे रोक दिया। नेकी का काम शुरू किया, रुक गए या रोक दिए गए, पीयर प्रेशर में आ गए, किसी की मोहब्बत में आ गए, किसी की मजबूरी की नजर हो गए। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं वो यौम याउज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैह, जालिम इंसान अपने हाथ चबाएगा। इमेजिन करें, हाथ बंदा कब चबाता है? टेंशन में। बाज लोग नाखून को तरने लगते हैं, बाज लोग उंगलियों के सिरों को छूते हैं, यानी इतनी स्ट्रेस में होंगे उस दिन, इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा कि उनको एहसास ही नहीं होगा और उंगलियों के सिरे तक चबा जाएंगे। और कहेगा क्या, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूलि सबीला, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत न मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। और ये हालात हुए तो वो रसूल जिससे उम्मीद थी शिफात की, वो शिकायत लगाने लगे। वकाल रसूल या रब्बीन कौम इत्तखज़ू, वकाल रसूल या रब्बीन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा, मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक का निशाना बना रखा था, या छोड़ ही दिया था इस कुरान को। ये जो लफ्ज़ महजूर है ना, इसमें बड़ी गहराई है, छोड़ा हुआ, जिसकी परवाह नहीं थी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नाम से इस कुरान को थामा, लेकिन कुरान क्या कहता है उससे इनको कोई काम नहीं था। ये वो लोग हैं कि जब शादी के वक्त दुल्हा दुल्हन के सर पर कुरान रखते थे और कुरान के अहकामात पांव तले रुलते थे। क्या आज ऐसा नहीं होता कि कुरान के अहकामात पैरों तले रोंदे जाते हैं और कुरान के नुस्खे सरों पर रखे जाते हैं? पूरी शादी कुरान से मुख्तलिफ, कितनी सुन्नतें टूटी, कितने अहकामात छूटे, सूरत नूर की धजियां बिखर गईं, सूरत अल अहज़ाब के मजाक कर दिया गया, और कहा जल्दी से कुरान लेकर आओ, दूल्हा दुल्हन को उसके साए में रखे। वो कुरान जो एक मैनुअल ऑफ रेवोल्यूशन था, आज उम्मत मुस्लिमा ने इस किताब के साथ क्या किया? और आज लोग इस किताब से लोगों को रोकने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं, उतनी तो हम फैलाने की भी नहीं कर रहे। आज हम मुसलमानों के अंदर एक ग्रुप ऐसा तैयार हो गया, जो बहुत बड़ा ग्रुप, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं इस कुरान को पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं हदीस की बात करने की। और बुखारी, तौबा तौबा, उसमें तो इतनी शर्मनाक बातें लिखी हैं, मत कुछ नहीं करो, क्या मानो जो तुम्हारा दिल करता है वो मानो बस, और जबरदस्ती धोन धांसली के साथ तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। तो आज मैं और आप सोचें, मेरा इस कुरान के साथ ताल्लुक कैसा है? क्या वाकई मैंने इस किताब को छोड़ा हुआ है? कुछ लोगों ने एक टिश्यू पेपर की तरह यूं पकड़ा होता है कुरान, जब तकलीफ आई, मुश्किल आई, फटा से खोल लिया, और जब वो मुश्किल टल गई तो उसको यूं शाने बेनियाजी से छटक दिया कि शायद कभी इससे सोचा भी नहीं था। और आज उम्मत मुस्लिमा के डिक्लाइन की वजह यही है। इसी मौजू पे ये सूरत चल रही है, क्योंकि आगे एक आयत आ रही है, पूरी सूरत मुझे और आपको यही कह रही है कि इस कुरान के फुरकान को आम कर दो, फिर लोगों को गुनाह और सवाब का फर्क पता चलेगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि बेहिसी किस चीज की है, मस्ती क्या है? तो वजह फिर समझ यही आती है कुरान पढ़ के, कि कुरान समझ नहीं आता। कैसे कुरान आपको मुझे बुराई से रोके, जब तक कि मैंने इस कुरान को समझने की कोशिश नहीं की? दुनिया की कोई किताब हमने बगैर समझे पढ़ी हुई जो कुरान पढ़ा हुआ? तो आप इस वक्त कुरान को तो पीछे करें, जरा नबी को सामने लाएं। क़यामत का दिन इमेजिन कीजिए, बिल्कुल अपना नाम लिखें, इस दौर की उम्मत मुस्लिमा के लोगों को सोचिए, और नबी सल्लम आते हैं मैदान में। हम जैसे लोग जो उनकी एक झलक के लिए तरसते रहते, हम सोचेंगे शुक्र है मसीहा आ गया, आ गए शाफी महशर। वो सारी नातों के शेर भी याद कीजिए कि वो सब करने वाले, जिसको अल्लाह पकड़े उसको छुड़ाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कभी कुछ कभी कुछ, कितनी रोमांटिक शायरी अल्लाह के नबी के मैदान हशर में आके सिफारिशें कराने की। हमने तो वही सुना हुआ था, हम तो आपको देखकर खुश हो गए कि बस देखना अब जो होगा ना, बस अब देखना, सब के बीच में हमें उठा के ले जाएंगे और लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वाह क्या प्यारा नबी है। अब हम इसी सोच में थे, इतने में रसूल आए और आकर क्या कहने लगे, या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। मेरा अल्लाह, मेरा दिल करेगा जमीन फटे और हम उसमें गिर जाए। हम शिफात की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां शिकायत लग गई, क्योंकि रवैया कौम का ये था। अल्लामा इकबाल का एक शेर है फारसी का, जिसका खुलासा क्या है, कहते हैं कि अल्लाह तू बेनियाज है, तुझे क्या लगे किसी से हिसाब लेने की, क्यामत के दिन मेरा हिसाब ना लेना। फिर कहते हैं कि अगर ना गुजीर है, यानी इट्स मस्ट टू टेक दी हिसाब, तो मेरा हिसाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा के लेना, मुझे क्यामत के दिन उनके सामने रुसवा ना करना। जो तोहफा आपको कोई दे दे और आप उसको मिस यूज करें, और फिर वो देख ले के जो गिफ्ट आपने उसको दिया था आपने उसकी कदर नहीं की, तो आपके बारे में उसके दिल में क्या कदर रहेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल की मेहनतों से जो तोहफा मेरे और आपके लिए तैयार किया था, वो ये कुरान था। सच के नहीं, इसी कुरान की बुनियाद पे तफसीर है ना, इसी कुरान को समझने के लिए हदीस है। आपको पता है, आप कुरान को निकाल दें तो हदीस भी बुरी नहीं समझ आती, और हदीस को साइड पर कर दें तो कुरान बिल्कुल ही नहीं समझ आता। हदीस की तो बहुत सारी बातें फिर भी कुरान के बगैर समझ आ जाती है, कुरान की बहुत सारी बातें हदीस के बगैर समझ नहीं आती। 23 साल में एक किताब लिखी जाए, बिलफर्ज समझने के लिए सोचिए, और वो आपको गिफ्ट में दी जाए बड़े खूबसूरत ऑटोग्राफ के साथ, के तरक तुफी कुम अमरीन लन तदिल्लुमा तमस्सक तुम बिहिमा। अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह हदीस फरमा गए कि लोगों में तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु यू विल नेवर बी लॉस्ट और मिसगाइडेड और मिसलीड, कब, जब तक कि तुम इन दो को पकड़ लोगे, ए किताब अल्लाह ही व सुन्नति रसूल ही। आज उम्मत मुस्लिमा सुन्नतों को पांव के नीचे रोनती है और कुरान को सर पे उठाते, कभी कस्में खाते, कभी इसके तावीज लाते, कभी इस किताब की धूम मचाते। वो आपने सुनी होगी कुरान की फरियाद माहिरुल कादरी की, ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, किस बज्म में किस महफिल में मेरी धूम नहीं, फिर भी अकेला रहता हूँ, कोई मुझ जैसा भी मजबूर नहीं। आज हमने इस कुरान को बिल्कुल एक टोकन के तौर पे इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड समझे, जहां दिल चाहे इसको निकाल के यूज करेंगे, फिर जेब में, हालांकि ये कुरान हमारी जिंदगी की किताब थी। आज उम्मत मुस्लिमा दूसरों को कैसे दावत देगी जिसने खुद नहीं पढ़ा। एक लेडी की जो बात कल भी आपको जिक्र किया था कि वो प्रीस्ट है और वो कुरान की आयतें कोट कर रही थी, तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी कि इसने कुरान को पढ़ा तो बयान कर रही है ना। हम में से तो बहुत सारों को भी उस आयत का मतलब नहीं पता होगा जो उसने बयान की, शायद उसने भी कहीं से सुन ली हो, लेकिन हमने कितना पढ़ा। आप देखिए, आपको किसी जगह पहुंचना है और वहां पहुंचने तक, यहां से लेके वहां तक तकरीबन 6,000 साइन बोर्ड लगे हुए हैं, टेक हेयर कम हेयर, ये जो आपका नेविगेटर है यही है ना, अब इधर मुड़ जाए, अब उधर मुड़ जाए, कितनी खूबसूरत तरीके से डायरेक्शन वो आपको देते हैं, इधर जाए उधर जाए। क्या इसके बावजूद कोई लॉस्ट होगा? क्या वो भटकेगा? फिर तो वही भटकेगा जिसने जान के भटके। वो कहते हैं टेक राइट, आप कहते हैं लेफ्ट लूंगी, वो कहता है गो टूवर्ड्स नॉर्थ, आप कहते हैं साउथ जाऊंगी, फिर ही भटकेंगे ना। कुरान की हर आयत एक माइलेज स्टोन है सिराते मुस्तकीम के रास्ते का, कि वो लोगो भटक ना जाना, वो लोगो जिंदगी कैसे गुजारना, वो लोगो इस किताब से जुड़ना, और हम कहते हैं करेंगे वो जो हमारा दिल करे। आप गाड़ी की विंड स्क्रीन पे GPS लगाइए और वो नक्शा लगा दीजिए जो आपने जाने का रूट का निकाल दिया, क्या आप पहुंच जाएंगे वहां? यू नीड टू फॉलो दैट। जब तक इस किताब को फॉलो नहीं करेंगे नहीं पहुंचेंगे, और उस दिन की हसरत बुरी दोस्तियां। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला इसलिए फरमाते हैं, वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ए नबी हमने इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफी है, मत गैरों से रहनुमाई लो, भटकेवों के पीछे चलोगे तो क्या होगा। देखिए आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है, उन लोगों के पीछे चले जो खुद भटके हुए थे, गैरिल मखदूबी वलद्दालीन, या मखदूब के कौम को, या मखदूब के पीछे गए या दालीन के। किसी ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था डोंट फॉलो मी आई एम लॉस्ट। अब वो तो एक मनचले का जुमला था ना, कि मेरे पीछे ना चलना, मैं तो खुद लॉस्ट हूं। आज मैं और आप सोचें कि हम जिन लोगों के पीछे चलते हैं, हम जिनके लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी की कामयाबी की दलील बनाते हैं, और आज हम जिनके तौर तरीकों पर रस्मों रिवाज के नाम पर करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों लगा देते हैं, वो खुद कौन है जो खुद भटके, हम उनके पीछे भटक के क्या हम फिर सही रास्ते पे पहुंचेंगे? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह की गाइडलाइन हमें काफी हो जाए। वकाल अल्लज़ीना कफरू लौला नुज़िल अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा। आप जरा इनके एतराज सुने और आपको इसी से अंदाजा होगा सूरह फुरकान किस दौर में नाजिल होगी। अल्लाह के नबी पे एतराज करते थे, ये कैसा कुरान है, कुछ समझ नहीं आता, खत्म ही नहीं हो रहा, पूरा कब होगा, पढ़ तो लिया, अब दोबारा कब पढ़े, किसने पढ़ा आज से पहले। बिल्कुल वही इल्जाम है जैसे आज भी लोग कुरान को कटहरे में खड़ा करके ना तीर मारते हैं। हमने आज कुरान को पहले मुजरिम बनाया, हमारी तरक्की के रास्ते की रुकावट, और हम मीडियोकर बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, और हम इस किताब पर रहेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होंगे। मुजरिम के कटहरे में खड़ा किया, फिर अपनी हर नाकामी और महरूमी इस किताब पर डाल दी। बिल्कुल वही उस दौर के लोगों के एतराजात थे। मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों नहीं उतार दिया गया? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहे, हल्की हल्की फुहार की तरह, बारिश की तरह ये कुरान तुम्हारे दिलों को पिघलाए, दिल नरम हो। और अगर इस कुरान को सुन के दिल नरम नहीं होते तो वल्लाह ही रोने की बात है, दिल मुर्दा दिल नहीं उसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्द कोहन का चारा। जब उम्मतों को पुरानी बीमारियां लग जाती हैं ना, तो उसका इलाज इस किताब से होता है। इमाम इब्ने तैमिया खालिवन कहते हैं कि जिस चीज ने पिछले दौर में कौम की इसलाह की थी, वही बाद के दौर में भी इसलाह करेगी, और वो चीज कुरान है। और आज वो कुरान ही तो मिसिंग है हमारे निसाब से। आज आप दीन भी सीख लें तो आपको कुरान नहीं वहां दिखेगा, इस्लामियात दिखेगी, दीनियात दिखेगी। सैटरडे संडे स्कूल में आपको एक बुकलेट मिलेगी, बुक ऑफ मैनर मिलेगी, चंद छोटी सूरतों की तफसीर मिलेगी, लेकिन वो छोटे छोटे मासूम हाथों में ये कुरान नहीं दिखेगा। अपनी मर्जी से काट छांट के हमने किया, हम कहते इतना ही काफी है, ये छोटी सूरतें नमाज में पढ़ते हैं, ये बड़ी सूरत इधर पढ़ते हैं, और दैट्स इट। कटा फटा दीन जब हम अपनी किताबों के जरिए पढ़ते हैं, बिलीव मी, मैंने खुद मास्टर्स किया है इस चीज में। जब मैंने मास्टर्स किया उससे पहले मैं पढ़ाती थी, आप में से कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात पे, और आज मैं खुद ही अपना पोल खोल दूं कि मास्टर्स की डिग्री जिसका इतना गर्रा है, आज हमारे यहाँ कई कागजों में सिर्फ मास्टर की डिग्री आपकी चलती है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ सिर्फ इस कुरान के कोर्स के जो आपके लिए ऑफर किए जाते हैं ना, उसके मुकाबले में इतनी सी चीजें बगैर पढ़े मैंने दिया। किसी पेपर के लिए जा रही थी तो अचानक सडन मेरे वालिद की डेथ हुई और खबर मिली, फिर वापस गए, बगैर पढ़े बगैर किताब खोले मैंने इस्लामियात का पेपर दिया, और मेरे शायद पूरे नंबर आए होंगे जितने को आ सकते थे। मैं कहती थी ये है मास्टर्स जिसका इतना कर रहा है। तफसीर पढ़ी भी थी, पहले पढ़ती थी। मेरी क्लास में यंग बच्चियों का एक ग्रुप आया तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने तो सारी जिंदगी साइंस पढ़ी, मुझे तो इस चीज में कोई इतना था ही नहीं, तो बताए वो कहेंगे हमारे पेपर हो रहे, आप भी दें, आप भी दें, आप भी चले। उन्होंने जबरदस्ती मुझे भी दाखिल करा दिया, और अल्लाह के हुक्म से आप देखिए बगैर पढ़े दिया। मैं कहती थी ये पढ़ाते हैं, और जो वो हमारी छोटी सी किताब सूरत तौबा की, उसमें भी कुछ आयतें थी, छोटी चंद सूरतें और कुछ ऐसी। तो मैं कहती थी जिस स्कूल का मास्टर जिस लेवल का है, आप बताइए वहां की फिर मैट्रिक और एफए की, और अगर उससे पीछे की क्लास में जाए तो वो साइंस कितनी को होगी, वो भी हमने पढ़ी हुई है। दीनियात के नाम पे क्या पढ़ाते हैं, कुरान को आम करें। आयत आने लगी है कि आप देखेंगे कि आज इस दौर में जिसने इस सूरह फुरकान के इस पैगाम को पा लिया कि दुनिया को झूठ सच का फर्क देना है, तो इस किताब को आम करना होगा, और जितने इल्जाम कोई लगा सकता था वो सारे आपको इस सूरत में मिल रहे हैं इस कुरान के ऊपर। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे इन चीजों को। अल्लाह अकबर। फरमाया इसलिए किया कि हम इसको तुम्हारे जहन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज के लिए हमने इसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग हिस्सा की शक्ल दी। और इसमें एक मसलत ये भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आए, उसका ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। जो लोग उंधे मुंह जहन्नुम की तरफ धकेले जाने वाले हैं, इनका मौकफ बहुत बुरा है और इनकी राह हद दर्जा गलत है। अल्लाह ताला हम सबको अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा जिक्र अंबिया कराम का। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके साथ उनके भाई हारून को मददगार के तौर पर लगाया, और उनसे कहा जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयात को छुटला दिया, आखिरकार इन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह का हुआ जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की, हमने इनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया, और इन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद और समूद और असहाब रौस और बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए, और इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया, और आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। और इस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई। कौन सी बस्ती? कौमे लूत। अफलम यकूनु यरौनहा, क्या उन्होंने इनका हाल ना देखा होगा, मगर के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्को ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। हाईलाइट करें, आप अपने ऊपर ले लें, अगर आपका ये गुमान है कि लोग आपके पर्दे और हिजाब और निकाब और दाढ़ी का मजाक उड़ाते तो नबी का भी उड़ाते थे, हंसते थे, जोक करते थे, वो देखो जा रहे हैं, वो देखो का। अच्छा कहते हैं क्या ये शख्स है जिसने जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बदगुमानी कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम न गए होते। नोट करें, खुश हो रहे हैं अपनी बेदीनी पे, कहते हैं शुक्र है हम इतने स्टबन थे ना, हम इसकी बातों में नहीं है, तुम आ जाती हो बातों में जज्बाती, शुक्र है हमने देखो कितना ठंडा ठंडा रमजान गुजार लिया, घर बैठ के पढ़ते रहे और अपनी मर्जी से काम करते रहे, खुश हो रहे हैं कि हम नहीं बचे, हम इसकी बातों में ना आए। अच्छा वो वक्त दूर नहीं जब अजाब देख कर इन्हें खुद मालूम होगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया। कौन गुमराह होता है? अब आयत को हाईलाइट कीजिए, आयत 43 है। ये भी आयत तदब्बुर है, लेकिन एक और आयत हम इंशाल्लाह आगे आएगी तो आपको कोशिश करेंगे दोनों की भेज सके, नहीं तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आराइत मन इतखज इलाहु हवाहु, क्या कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। ये है वो आयत के जिसको आज उम्मत मुस्लिमा को खुद समझना है और दूसरों को समझाना है। कुरान से दूरी नफ्स परस्ती को जन्म देती है। जब हमने सुन्नत से काटा कुरान को, तो ख्वाहिशों से जोड़ लिया, अपनी मर्जी की तफसीरें की, और जब ख्वाहिश की पैरवी की तो ना कुरान दिखा ना सुन्नत दिखी। शैतान इबलीस क्यों इबलीस बना आपको पता? ख्वाहिशों के पीछे पड़ गया था, अकल इस्तेमाल करने लग गया। आज आप देखिए कि ख्वाहिश परस्ती सबसे बड़ी वबा है। आज हमारी ख्वाहिशें ही हमें जीने नहीं देती, इसीलिए हम अल्लाह को भूले होते हैं। तो नफ्स को पूछना बदतरीन है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि इस जमीन पर, यानी आसमान के नीचे जमीन पर, जिस माबूद को सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो इंसान का अपना नफ्स। अना, आई, एम, माई, माइन, अपनी ही जात में खोए हुए हैं। ये सब मेरी ईगो, मुझे पूजो, मैं कैसी लगती, मेरा क्या, मेरा घर, मैं, और अपनी ख्वाहिशों को पूछने वाला अल्लाह को फिर नहीं पूछेगा। ठीक है, घर में दो बुत तो नहीं रह सकते, एक आपका है तो एक रब का है। हम कहते हैं अल्लाह अकबर, बट आई एम अकबर टू। अल्लाह अकबर है तो कहिए इन्नी असगर। अपनी अना को तोड़ के कुरान पे अमल होता है, अपने स्टेटस को, अपने इस बुत को छोड़कर फिर इस्लाम समझ जाता है। जो लोग अपनी अना में रहते हैं और बहुत खुद को बड़े समझते हैं, उनको फिर किताब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कुरान तो कुचलता है उनकी ख्वाहिशात को। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी ख्वाहिशों पे चलने से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ताबे कर दे। फर्क छोटा सा है, आप खूब अपनी ख्वाहिशात माने, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल की माने, सब माने, शर्त है कि उससे पहले अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के दीन के ताबे कर लें। देखिए, हमारी चॉइस जिंदगी में कई दफा बदलती है ना, उम्र के साथ बदलती है, माहौल के साथ बदलती है, माल की कमी ज्यादती होने से बदल जाती है ना। तो इतनी जो चॉइसेस बदली तो एक चॉइस और बदल लेते हैं। अल्लाह जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद, फिर खूब ख्वाहिश पूरी कीजिए। अल्लाह जो तुझे नहीं अच्छा लगता आज से, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, छोड़ दिया मैंने इसको, अब आप खूब ख्वाहिश परस्त हो जी, नो प्रॉब्लम। आप लिख के देख लीजिए, मैं अक्सर तकाबुल कराती हूँ तो एक लफ्ज लिखिए हवा। अरबी जुबान में ख्वाहिश को हवा कहते हैं ना, क्योंकि यहां भी वही लफ्ज है ना, हवा हो। हवा बा मुकाबला हुदन, हुदन क्या है जो अल्लाह ने भेजी, हुदन लिल मुत्तकीन। जब हुदन की जगह हवा आ जाती है ना, तो इंसान भटक जाता है। और ये हवा जो चलती है ना बाहर, वो भी यही है, हवा उड़ाती फिरती है इंसान को, इस तरह ख्वाहिशें भी उड़ाती फिरती हैं। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। एक ख्वाहिश पूरी करें तो उसके पीछे से एक और ख्वाहिश सर उठा के देखती है, उसको पूरा करके देखें तो तीसरी ख्वाहिश हमारी सामने खड़ी होगी। तो इन सारी ख्वाहिशों को टेम कर लें, दैट्स इट। और साहबा ने ऐसे ही किया, फिर उनको इसमें भी मजा आने लग गया। फरमाया, क्या तुम ऐसे लोगों के साथ कर सकते हो? अब खुद सोच लो, क्या तुम समझते हो कि अक्सर सुनते हैं? नहीं, ये तो जानवर जैसे हैं, कैसे, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। आप देखिए कि जानवर शिर्क नहीं करते, इंसान शिर्क करता है। इंसान जब जानवर बनता है ना, तो वो जानवर भी नहीं रहता। मसलन कुत्ता वफादार है, इंसान वफादार नहीं रहता अपने मालिक का। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को देखो किस तरह से वो बात करते हैं। फिर इसके बाद अगली आयत देखिएगा, तुमने देखा नहीं तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो इसको दाइमी साया बना देता। हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है, हम इस साए को रफ्तार रफ्तार अपनी तरफ समेटे जाते हैं। कितनी आसान आयत है, सिंपल सी बात है। दिन में जो सूरज के मुख्तलिफ एंगल है उसको कहा गया, और किसी ने कहा कि मुझे किसी ने कायद दी है पढ़ने को, कि किसी लड़के का तसव्वुर करके कि उसका पढ़ो तो देखना वो कैसे तुम्हारे कदमों में आएगा। शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, उस लड़के का खुद ही दिल चाहेगा तो आप जरा चेक कर लें वो वजीफा ठीक है। तो मैंने जब वो पर्ची उनके हाथ की खोली तो ये आयत लिखी थी, ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا, قبضہ کر لو اس لڑکے پہ. لا حول ولا قوت الا, یہی رہ جاتا ہے قرآن, واللہ کی قرآن ایسے ہی رہ جاتا ہے. اور حالانکہ قبضہ اس کو کہتے ہیں, یہ جو پام ہوتی ہے نا مٹھی, یہ قبضہ ہے. تو صرف لفظوں کے ساتھ جوڑا, پھر اس کو پکڑ کے اپنے حساب سے پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر آپ بھی میں بھی, پھر چھوڑیے باقی چیزوں کو, یا آیتیں پڑھتے جاتے ہیں اور سارے نان مسلمز کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, پھر کیا ضرورت ہے دعوت اور جہاد کی. لا حول ولا قوت الا باللہ, یقین کرے رونے کا مقام ہے, دل سے ہوک اٹھتی ہے کہ اتنی چنی ہوئی امت اتنی ناسمجھی کے کام کرنے لگ گئی. اس کی وجہ کون ہے؟ ہم اس کی وجہ ہے, ہم نے اس کتاب کو ہم نہیں کیا. اللہ ہمیں اس پہ معاف کر دے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا, اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے, پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے سیراب کرے, ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے, اور اپنی مخلوق میں بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کرے. کیا ہم بارش کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں؟ کہ جس طرح بارش آسمان سے برسی تو مٹی نرم ہوئی, اسی طرح یہ قرآن کی بارش دلوں پہ پڑتی ہے تو دل کی مٹی نرم ہوتی ہے. مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے. پس نبی, کافروں کی بات نہ مانو بلکہ وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ, اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو. یہ ہے آیت تدبر. اس پہ ایک تو درس بھی ہے, پورا ڈیٹیل درس ہے, جہاد بالقرآن یا قرآن کو عام کر دو. لیکن حقیقت میں یہ اس وقت امت مسلمہ کا بہترین معاملہ ہے, اسی کو آپ جہاد بالقلم بھی کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کو قرآن دینا یہ امت مسلمہ کی جاب تھی. سمپل سی بات ہے, جہاں تک پہنچ سکتے ہو, جہاں تک پہنچ سکتے ہو, کلکم رائیون. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اس چیز پہ اسائن کیا گیا کہ جہاں تک تمہارا دائرہ کار ہے, جہاں تک تمہاری اپروچ ہے, تم نے وہاں لوگوں کو دین دینا. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس دین کو پروفیشنلی اس طرح لوگوں تک پھیلانا تھا کہ لوگ اس کو پالے. اب ہم نے کیا کیا؟ وقت تو ہمارے پاس اتنا ہی تھا جتنا سب کے پاس ہوتا ہے. جو وقت قرآن کو اور دین کو دینا تھا وہ ہم نے لوگوں کو دے دیا, جو حق قرآن اور دین کا تھا وہ لوگوں کو دیا. جب لوگوں کو حق سے زیادہ دیا, کتاب کو اس کا حق بھی نہیں دے سکے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آج یہ کتاب عام نہ ہو سکی. کارٹون دیکھیں گے سمجھ کے دیکھیں گے, ناول دیکھ پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے, اخبار پڑھیں گے عقل سے پڑھیں گے, قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ اور آج امت مسلمہ کا اپنا تعلق اس کتاب سے کیا؟ کہتے ہیں بتانا ختم کب ہوگا, اما یتسالون میں جائیں گے تاکہ جلدی سے پڑھے اور ختم ہو جائے. قرآن پڑھے, کوئی سامنے نظر آتا ہے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, پڑھتے ہوئے سات باتیں کرتے ہیں. تو آج اس کتاب کے ذریعے ہم نے اس دنیا کو کس طرح مسخر کرنا ہے کہ سوسائٹی کی گراس روٹ سے لے کر ان لیڈز تک قرآن کے پانی کو پہنچانا ہے. اب دیکھیں ایک درخت کو امیجینیشن میں لائیے, یا ایک باغ ہے وہاں گھاس بھی اور درخت بھی ہیں. پتوں پہ پانی ڈالیں گے نا تو درخت کبھی بھی پھلے پھولے گا نہیں, مٹی جھڑ جائے گی جو پتوں پہ لگی ہوئی ہے. کیا کریں گے؟ جڑوں میں پانی ڈالیں گے. جڑ پہ ڈال دیں گے نا, خود بخود پورے درخت میں چلا جائے گا. جڑیں کیا ہوتی؟ کسی بھی سوسائٹی کی گراس روٹ, عام سے عام درجے کے لوگ, پبلک, جس میں آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ جن کی زندگی میں کبھی قرآن نہیں کھلا ان کو بھی لے آتے ہیں, اور اسی طرح دوسرے بھی ہیں. اب جب یہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا؟ سب سے پہلے نمبر ایک, آپ کو اپنے اندر خود جہاد کرنا پڑے گا اس قرآن کے ذریعے. قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہی جہاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی نیند سے جہاد کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی, آپ کو اپنے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے مینج کرنا پڑے گا, آپ کو ایک مال لگانا پڑے گا, آپ کو کچھ کتابیں لینی پڑیں گی. آپ کا اپنے ساتھ جہاد سب سے پہلے شروع ہوتا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں پھر اس میں خواہشوں سے جہاد ہوگا, پھر شیطان سے جہاد ہوگا, آپ کو کئی موقع پہ مسئلہ آئے گا, آپ کو بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کرنا پڑے گا, چاروں طرف لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا آج ہم اس کو 23 مہینے بھی نہ دے سکے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی میں سوچتی ہوں کہ کیسے ایک انسان یہ ساری چیزیں سوچ سکتا ہے کہ ہم اس کتاب کو عام کیے بغیر دنیا میں خیر لیں. लोगों को फेमिलियर करना है इस किताब के साथ। लोग इससे थ्रेट फील करते हैं। आप देखिए, जिस चीज पर हाथ चलता है ना, उसको चलाना आसान होता है। अपने घर में खाना आसानी से बनता है, अपनी गाड़ी ठीक चलती है, अपना कंप्यूटर आपसे ठीक चलता है। इस कुरान से फेमिलियर करना है खुद को भी, दूसरों को भी। जब लोग कहते हैं ना, फुलां सूरत किधर है, फुलां कहाँ है, तो मुझे एकदम झटका लगता है। फिर मैं कहती हूँ, नहीं पता होगा बेचारों को, मैं प्यार से बता भी देती हूँ जो भी कोई होते हैं, लेकिन मुझे झटका बहुत लगता है। हाउ इज इट पॉसिबल किसी को अपने बच्चों के नाम ना आते हो? हाउ इज इट पॉसिबल ये ना बताओ कि बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, पहले दुनिया में कौन सा है, छोटा कौन सा। हमें तो अपने घर की एक एक चीज चम्मच का पता है कि ये नई है, ये पुरानी है, ये कब आई, ये कब नहीं आई, पता कि नहीं पता। ये महंगी है, ये सस्ती है, पता है कि नहीं पता। पूरे घर को एक नजर से सोचे तो ये कैसे हो सकता है, मैं कुरान की सूरतों का नहीं पता, आयतों का नहीं पता, किसका क्या मिजाज है, कौन सी गर्मी, कौन सा, ये कैसे हो सकता है, नहीं पता। नहीं पता तो मान लीजिए इस कुरान पे हाथ नहीं खुलावा। लोग इस पे हैरान होते हैं, आपको याद कैसे रहता है, मैं इस पे हैरान होती हूँ, आपको याद क्यों नहीं रहता। जब ये किताब आपको अपनी किताब लगेगी, फिर ऐसे होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। जब आप खुद से ये काम करेंगे ना, तो इसके लिए आपको कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। आज हम मुसलमान दूसरों को क्यों नहीं ये बताते? क्योंकि हमें खुद नहीं आता और मसला बड़ा है। फिर आप देखिए कि जब हाथ में कलम आता है ना, तो उस कलम के जरिए मुआशरे के अंधेरे दूर होते हैं। जब अंधेरे दूर होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह किताल की नौबत ही नहीं आती। किताल तो बहुत दूर की बात है। हक और बातिल की कशमकश, ये फुरकान तो कुरान से शुरू हुआ। फिर आप दीन पे चलना शुरू करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा तो लोग आपकी मुखालफत करेंगे। आज आप घर में आराम से बैठिए, कोई मुखालफत नहीं है। आप कुरान की तालीम को आम करें, इसको अल्लाह अपने कुरान में जिहादे कबीर कह रहा है। सबसे बड़ा जिहाद यह है कि मुआशरे के अंधेरों में कुरान के चिराग जला दें। इसके लिए अगर अल्लाह आपको मुझे कबूल कर ले, यकीन कीजिए कि हम अपने नसीब पे फख्र करें। जब ये चिराग आप जलाने निकलेंगे, मुखालफतें होंगी। क्यों? लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बाज़ का तो उनकी जात के खिलाफ कोई बात आ जाएगी, बाज़ दफा उनके आराम के खिलाफ होगी, बाज़ दफा कुर्बानियां होंगी, बाज़ दफा कुछ होगा। कोई एक सिस्टर थी, वो कहने लगी, एक इमाम साहब है, वो बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं और सच बताते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि जो इधर उधर के काम करने वाले, जिनके बिजनेस अच्छे नहीं थे, उन्होंने मस्जिद में आना छोड़ा, दूसरी मस्जिद में चले गए। क्योंकि इमाम साहब कहते थे, मैं पेड़ नहीं हूं कि मैं आपकी मर्जी के मसले बताऊं। हक ये है कि ऐसी कमाई कबूल नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, कमाई नहीं छोड़ी, वो मस्जिद छोड़ दी। तो छोड़ दी तो छोड़ दी। इमाम साहब का क्या गया, मुझे नहीं पता उनके क्या तरीकेकार थे। लेकिन ये सच है कि जब ये कुरान दुनिया में आम होगा, तो कुछ लोग तो मिसफिट होते हैं। बस आपने इस वक्त अपने आप को जमाते रहना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। फिर आप देखिए, जब आप खुद अमल करके आप कहते हैं, चलिए माशाल्लाह, आई एम रेडी टू सर्व द ह्यूमैनिटी, माशाल्लाह। अब आप जब सोसाइटी में आएंगे ना, तो सबसे पहला आपका महाज है। ये टॉपिक मैंने दो से ज्यादा दो, पांच महाज हैं कुरान के, कि जब आप कुरान से लैस, माशाल्लाह, आप कुछ वक्त लगा के कुरान की तालीम लेते हैं, आप कुछ अपने अंदर दर्द पैदा करते हैं, आप जब बाहर निकलेंगे ना, सबसे पहला आपका महाज जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमों को जिस पे जाके लड़ना है, वो शिर्क का महाज है। वो कब्रें, वो दरगाहें, वो सारे पीर बाबे जहां लोग कुरान से दूर होने की वजह से जाके सर टिका रहे हैं, माथे टिका रहे हैं, आप जब उनसे जाके बात तो करें, वो तो कहेंगे आप तो पता नहीं मुशरकी हो गए, पता नहीं आपको वहाबी कह देंगे, आपको साबी कह देंगे, आपको कुछ भी कह देंगे। और शिर्क अनपढ़ लोगों में होता है, ये पहला महाज होगा। जब शिर्क के साथ बात होगी ना, तो आप देखिए, ये इट्स नॉट बिग डील। सिर्फ ऐसे लोगों को कुरान का तर्जमा सिखा दें, तर्जमा सुना दें, सूरत अल अनाम सुना दें जाके, और इसी तरह सूरत अल नहल और इस तरह की, तो समझ जाएंगे वाकई। हाँ, ऐसे लोगों पर टाइम बहुत लगाना पड़ता है, ये मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, वो देर से बात समझते हैं। होते बहुत प्योर है, बहुत सिंसियर, मुखलिस, लेकिन बात नहीं जल्दी उनके पल्ले पड़ती। और जो पढ़े लिखे जरा दुनियावी तौर से भी, और दूसरे थोड़ा सा हिंट देते हैं, वो कहते हैं, बस बस, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, गो अहेड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और वो थोड़ी देर में आपसे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो ये फितरी बात है। लेकिन बहरहाल, शिर्क मिटाना इतना मुश्किल नहीं, सिर्फ हम और आप अगर इस कुरान के हथियार को ले निकले। दूसरा महाज जो आएगा ना, जो उससे बड़ा, वो क्या, पढ़े लिखे लोगों तक कुरान पहुंचाना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए, जिनके जहनों में शकूक है, शुभात है, जिनको कुरान अब अजीब लगता है, ये होते हैं क्रीम ऑफ दी सोसाइटी। ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं छोड़ते, क्योंकि ये आपके साथ 10 बातें करेंगे तो सीधे लोग होते हैं, वो कहते हैं इट्स ओके जी, कह दिया, आगे चले जी, बात समझ आ गई, आगे चले। लेकिन ये आपसे 70 बातें करेंगे, क्योंकि ये आपके साथ औरों को भी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सारों से देखते हैं, वो किसी और के इज्म से भी इम्प्रेस है, उनको कई चीजें। अब ऐसे लोगों के साथ आप प्यार से, मोहब्बत से, नरम हाथों से इस किताब की बात करते जाएं, करते जाएं, तस्किया करें, तरबिया करें। एक वक्त आएगा और आप इनको अल्टरनेट दिखाएं, इनको दिखाएं कि इस मिसाल एक इस्लाम का सोशल सेटअप दिखा दें, कितने उसके फायदे हैं। और ऐसे लोगों में अमूमन इकोनॉमिकल इश्यूज बड़े उठते हैं, तो आप उनको इस्लामिक का फिर इकोनॉमिकलिज्म दिखाएं, फिर आप उनको सुनाएं कि ये नोट कैसे बने, गोल्ड कॉइन से निकले, फिर वो मुतासर होंगे, अच्छा ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, हमें तो ये पता ही नहीं है कि, यानी इनको उनके लेवल से भड़ के आप बड़ी बात करें और इनको ऑल्टरनेट दें। जैसे अपने बच्चे के ऐसे छुरी छुड़ानी होती है ना, तो आप उसको क्या देते हैं, आप उसको कोई रैपर ही पकड़ा दें टॉफी का, कुछ ना कुछ देंगे फिर होगा। और अगर आप छुरी बच्चे से छीने और खींचेंगे तो क्या होगा, आप देख लीजिए कि वो उसका भी हाथ जख्मी करा देगी, वो आपको भी, वो खेलने के जोश में है लेकिन आपको वो खतरा नजर आ रहा है, आपको छुरी दिखती है, बच्चे को वो खिलौना दिखता है। इसी तरह मुआशरे में लोग हराम हलाल का फर्क किए बगैर खेल रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो कहा जाहिद हूं भी जिहादन कबीरा, इस किताब के जरिए उनको बताओ ये गलत चीजें हैं, ये सांप और बिच्छू हैं जो पाले में हैं, इसका कल हिसाब देना पड़ेगा, बस इस वक्त भी मसला होगा। और लोगों से गुनाहों की छुड़ियां छुड़ाना ये आसान काम नहीं, यही है कशमकश जिसको कहा जाहिद हूं भी जिहादन कबीरा। हम सब नबी सल्लम की सीरत से आगाह हैं, 40 साल आपकी जिंदगी के इब्तदाई दौर, कोई आपका दुश्मन नहीं था, आप लोगों की आंखों का तारा थे। खल्फुल फजूल को देख लीजिए, हजरे अस्वद का किस्सा देख लीजिए, हर जगह आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। जो ही इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक की आयतें उतरी और कुम फान जिर का हुक्म हुआ, सब दुश्मन हो गए। आज भी जो शख्स इस किताब को लेकर मुआशरे में आएगा, वहां इख्तलाफ होगा, तो वहां जिहादे कबीर करना पड़ेगा, ये होगा। रेजिस्टेंस नहीं जिस तालीम के साथ उठती, समझिए वो गड़बड़ है। और जिसको सारे ठीक कह दें, जिसको सारे एक्सेप्ट कर ले, वो कभी ठीक नहीं होता। आज अगर मैं और आप इस दौर में, 2015 का दौर लिख लीजिए, अगर वाकई को नेकी का काम करना चाहते हैं, आप कहते अच्छा क्या करें, कि गिरफ्तारी करानी है तो हमें बताइएगा, किसी को उम्रे पे भेजना है तो बताइएगा, ठीक है ये नेकी है। कल का दर्स बड़ा बिटर हो गया था, यानी बेटर इसलिए कि मैंने जन्नत के मौजू से शुरू किया, लेकिन मुझे एकदम बस यही लगा कि क्या वाकई वही जन्नत है जो हम अब चाहते हैं और वही सहाबा मांगते हैं। तो अगर आपको मुमकिन हुआ कभी तो सुनिएगा, जन्नत की तलब उसका नाम था, कि क्या जाली जन्नत तो नहीं है, कल जाके पता चला हो सॉरी हम तो किसी और ही जन्नत में आ गए, हमने तो सोचा था ये होगी, असली नहीं मिली है तो नकली है, नक्कालों से होशियार रही है। आज जाली नुस्खे हैं जन्नत को पाने के, और इसकी सजा आज दुनिया में क्या मिलती है कि अल्लाह मुखलिसीन को फिर दुनिया में बीमारियों, तकलीफों, टेंशनों में डाल रहा है कि नहीं फरिश्तों मैंने इनको जन्नत जरूर देनी है, जो भी है फिर अल्लाह दुनिया में पाक करता है। तो लिहाजा आज आंखें खोल लेंगे तो फायदा है, नक्कालों से पाक, होशियार, पाक, प्योर, क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दीन कैसे आएगा, चाहे तुम भी जिहादन कबीरा। मेरी बात आप क्यों सुने बताइए, मेरा आपको क्या मीठा, मैं आपकी क्यों सुनू, मैं सिर्फ अपने रब की सुनूंगी और मैं अपने नबी की सुनूंगी। आज जरूरत है शख्सियात से ऊपर उठकर, इदारों से ऊपर उठकर, नामों से ऊपर उठकर, उम्मते मुस्लिमा सिर्फ एक कॉज पे जमा हो जाए, सारे दीनी इदारे, सारी जमातें, सारे गिरोह इस बात पे मुत्तफिक हो जाए। खामोश, मेरे उस्ताद कौन है, चुप, डोंट आस्क अबाउट दैट, बस उनके लिए दुआ करो। तुम्हारे कौन है, तुम किस से सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, तुम किस स्कूल से पढ़े हो, के स्कूल, सब खामोश, सबको पीछे कर दे, सिर्फ 2 साल दे दे उम्मत को, डोंट टॉक अबाउट एनी पर्सनैलिटी। चलो इस कुरान को पकड़ते हैं और इसके साथ हदीस को लेते हैं, मसलकों से पाक और जमातों से पाक और गिरोही तासुब से पाक, इस किताब के सिर्फ तर्जमे तफसीर को आम कर दें, उम्मत खुद जान जाएगी कि कुरान का मिजाज क्या। आज हम दीनदारों ने लोगों को, आपको बताया, इस कुरान के पढ़ने से रोका हुआ, जिन्होंने किताब को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, वो कहते हैं ये आम लोगों के पढ़ने की चीज ही नहीं है। औरतें, तौबा तौबा, ये तो और ही गुमराही, अब औरतें पढ़ने लगे और अब तो पढ़ाने भी लगी, वो फतवे दे देंगे आपके खिलाफ, इन्होंने उम्मत को खराब कर दिया, इन्होंने धोखा दिया, क्यों, क्योंकि हमारी मोनोपली रहे, वी आर है, वी हैव द अथॉरिटी, हमसे पूछ के मसले करो, जब कोई मरे हमें बुलाने, और जब कोई निकाह कराने हमसे, और तुम कहां जरूरत रखते हो। देखिए ये बात तलख हो रही है लेकिन लंबी भी हो रही है। आप कहते हैं कि यहूद का डिक्लाइन कब आया, जब तौरात की तालीमात को उन्होंने बंद कर दिया, तौरात आम यहूदी के घर में निकल आए ये जुर्म था, तौरात के नुस्खे छापना, उसको आम पब्लिसाइज करना उनके नजदीक में जुर्म कबीर था, सिर्फ एक दो नुस्खा होता था जो उस वक्त के बादशाह के पास होता, और वो भी उसके तख्त के पीछे कहीं किसी छोटे से चैपल में होता, और एक अपनी मर्जी का जो प्रीस्ट उनका वहां रखा जाता दरबार में, उसको इजाजत थी वहां जाके मसला देख के पढ़ के आने की। कोई मसला आता बादशाह उसको कहता जाइए देखिए, इसलिए तो फिर उस एक प्रीस्ट के हाथ गर्म करके लोग मसला बदलवा लेते थे। कुरान जितने आज छपते हैं, अगर इस तरह तो आज छपती तो क्या वो उलमा उनके किताब को तब्दील करते? तो जब किताब पर चंद लोगों की मोनोपोली हो जाए ना, फुलाम आली हजरत और आलिम और फाजिल और हाफिज और फुला, तो याद रखिए समथिंग इज रॉन्ग। ये कुरान सिर्फ मेरी किताब नहीं है, इस शहर में अगर 10-15 और लोग भी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ ये किताब उनकी और मेरी मलकियत नहीं है, ये आपकी मलकियत है। और इस किताब को जब तक आपने खुद नहीं पकड़ा अपने लेवल पे, आपको आपका हक नहीं मिला। ये है जिहादे कबीर, और ये उम्मत मुस्लिमा का आज 100 मसलों में से एक हल है। एक चीज आम कर ले, इस रमजान से ये दर्द लेकर उठे कि मैंने नहीं और जीना जब तक ये किताब मुझे समझ ना आ जाए, मैंने कुछ और नहीं पढ़ना जब तक इस कुरान को ना पढ़ लूं, मैंने और नहीं कमाना जब तक मैं इस कुरान को ना समझ लूं, मैंने कुछ और करने सीज कर ले अपने आप को। देखिए इमरजेंसी लगती है सब सीज, अल्लाह ना करे कर्फ्यू लगे सब सीज, एक सीज लगाइए अपनी जिंदगी पे, स्टॉप हेयर, जहां जिससे आपका दिल करता है, दिल ठुकता है, जिसकी बात समझ आती, जाके उससे एक दफा कुरान सीख के। वरना हम वो ड्राइवर हैं कि जो बगैर ड्राइविंग सीखे ड्राइविंग कर रहे हैं, तभी तो ठोकरे खाते हैं ना। जिसको नहीं आता फिर वो खुद भी खराब होता है और इसी तरह से होता है। तो ये मेरे और आपके पास एक अमानत है, ये अल्लाह की किताब है, इसको बंदों तक पहुंचाना है, प्लान बनाए। इस अमानत को अगर इंसानियत तक नहीं पहुंचाया, इंसानियत ख्वाहिश परस्त होगी, उनके कपड़े भी उतर गए, उनके लिबास भी खुल गए, और इसी वजह से वह। और जिस दिन आप सोचेंगे, अभी मैं रास्ते में भी एक मैसेज सुन रही थी किसी स्टूडेंट का, जब तकवा आता है ना तो खुद हलचल लग जाती है, मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने इंडिया जाना है, मैंने बांग्लादेश जाना है, मैंने इधर जाना है, मैंने वहां क्या करना है, मैं वहां जाके क्या करूंगी। कोई आपको थिंग्स टू डू की लिस्ट नहीं देता, कोई जॉब असाइन नहीं करता, कोई कल आपसे रिपोर्ट नहीं मांगेगा, आपका दिल मांगेगा कि जाऊं, जाना है, हम सब ने ईद पे जाना है, इधर जाए उधर जाए, प्लान लेकर जाए कहां जाकर क्या करना है। फिर जो ख्याल आएंगे आप हैरान हो जाएंगे। जब इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो अल्लाह के हुक्म से फिर अल्लाह ताला उसके दिल में ख्यालात भी डालता है। और इसके लिए फिर जरूरत है कि उम्मत एक टीम बने, और इस टीम के साथ जब काम करेंगे फिर देखें, हर बंदे को उसके हालात के मुताबिक लेना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत कुछ बेहतर होगा। बात लंबी हुई लेकिन इसकी जरूरत थी। और आज के दौर का सबसे बड़ा जिहाद पता क्या है? 5 महाज है, वो लेक्चर आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाजा होगा। आज के दौर में सबसे बड़ा एहसास आज मुसलमानों का काम क्या है? कि उनके अंदर से शर्मिंदगी का एहसास खत्म कर दें, वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम, ये एहसास निकाल दें। इसके लिए फिर हमें टीन्स तक पहुंचना होगा, अपनी यूथ को कुरान का ये खूबसूरत तरीका सिखाना पड़ेगा जो हमने सूरत नूर में पढ़ा, और हम जो आजकल रोज इधर उधर पढ़ते हैं, मैं और आप सिर्फ, हम तो उर्दू वालों को पढ़ाएंगे, अपनों को ही पढ़ा रहे हैं, चाहे हम अमेरिका में कई साल से या कुछ। अगर आपको वेस्ट में इस्लाम फैलाना है तो आपको अपने बच्चों को इस तरह कुरान सिखाना पड़ेगा कि उनके अंदर रूह बेदार हो, फिर वो जाके बात करें। मैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, हमारी इंग्लिश सुन के वो रो पड़ेंगे कि जाइए आपके हम बात नहीं सुनते। इनके साथ वो ही बात करेंगे जिनके यहाँ के एक्सेंट है, और उसके लिए हमें अपनी यूथ को लाना पड़ेगा। और यूथ अगर दुनिया कमाती रह जाए और वो अपने कैरियर बिल्ड में करे, और इसी में उनकी शादियां हो जाए, शादियों के बच्चे हो जाए, वो एक विश सर्कल में चलती रहे, उम्मत पे जवाल ही रहेगा। और उम्मत के हालात उसी दिन बदलेंगे जिस दिन मुसलमानों की यूथ को इस बात का यकीन आ जाए। अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं बनना, एहसास कमतरी को खत्म कीजिए। फिर आप देखिए जिस दिन हम इस बात में कामयाब हो गए ना कि जो मुसलमान हैं वो मुसलमान लगे, लिखिए इस मोटो को, मैं मुसलमान हूं और मुझे मुसलमान नजर आना है, उस दिन आप कामयाब हैं। ये तो बड़ी महरूमी की बात है ना कि आप मुसलमान दिखना ही ना चाहे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये अर्ज पैदा कर दे, नीड ऑफ द आवर ये है कि जाहिद हम भी जिहादन कबीरा। और इसमें मुश्किलात तो फिर आएंगी, इसीलिए अब आगे देखिए ऐसी मुश्किलात की बात कर दी, इससे बचाए खैर करेगा।